दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। आज हमारी भट्टी में विशेष बाबा के ज्ञान रत्नों को लुटाने वाले राजयोगी रामनाथ भाई पधारे हैं। हम एक हाथ ऊंचा करके स्वागत करेंगे। दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इंडिया कॉलोनी अहमदाबाद के सभी भाई बहने विशेष तपस्या भूमि में मधुवन में पठी करने के लिए आए हैं। ऐसे तो स्थूल बारिश भी हो चुकी, बारिश ने भी हम सबको शीतलता का अनुभव विशेष कराया। ज्ञान बारिश भी भिन्न भिन्न बादल आकर यहाँ से बारिश करके भरपूर करके चले जाते हैं। एक के बाद एक नए नए बादल, वैरायटी बादल हम अनुभव कर रहे हैं। विशेष रामनाथ भाई करीब 40 साल से ज्ञान में चलते हैं। 35 साल से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। विशेष हमारी रिलीजियस विंग, धार्मिक विंग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो। बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहो, महात्माएं कहो, धर्म नेताएं कहो, उनकी सेवा के लिए आप निमित्त हो। और न सिर्फ भारत की सेवा, लेकिन विदेश में भी आपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी अपनी सेवाएं दी है। ऐसे ज्ञान से भरपूर तीव्र पुरुषार्थ के अनुभवी एकाग्रता के अभ्यासी आज रामनाथ भाई हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपको अनुरोध करती हूँ, आप अपना जो टॉपिक दिया है श्रीमत की लगाम द्वारा, मन जीत सो जगत जीत, इस विषय पर क्लास कराएंगे। रामनाथ भाई।
ओम शांति। सबका तन भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया। प्रकृति ने तन को शांत किया है ना। तो अहमदाबाद गुजरात में जाओ, कितनी गर्मी है ना। और प्रकृति ने तन को शांत किया और मन को किसने किया? किधर आए हो आज? आज बाबा ने मुरली में पूछा, बच्चे आप किधर आए हो, किधर आए हो? आज मुरली में जो बाबा ने पूछा, आप किधर आए हो? हाँ, बाबा के गोदी में आए हो। क्यों आए हो? ते पहले क्या थे? मनुष्य से देवता बनने आए थे। मनुष्य माना गरम है ना, देवता माना शीतल। तो बाबा के गोदी में आए हो, मन भी शीतल, तन भी शीतल। बाबा का घर शांत शीतल है, देख लो है ना। सदा है, कभी भी आप बैठो कहीं भी चारों धाम में, मन शांत हो जाता है। मन अशांत माना किसको कहेंगे? खाली नहीं, खाली मन हो गया तो शांति नहीं कहते। मन में अच्छे विचार आना चाहिए, ज्ञान के विचार, किसी के प्रति शुभ भावना। मन में अच्छे विचार आते हैं तो उसको कहते हैं शांति। शांति माना खाली मन कभी नहीं होता है, खाली कुछ भी नहीं चला, उसको कहते हैं डेड साइलेंस। हमारा राजयोग स्वीट साइलेंस है, अच्छे अच्छे विचार आना चाहिए। खाली रहेगा तो कोई फायदा नहीं। तो गरम माना मन गरम है, अशांत है माना व्यर्थ विचार चलते हैं। आज बाबा ने कहा स्लोगन में है ना, व्यर्थ विचार क्या करता है? व्यर्थ विचार नहीं चलना चाहिए, लेकिन व्यर्थ आता है, क्या करे? इसलिए आज टॉपिक रखा, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? श्रीमत के लगाम। अब पहले जानना चाहिए श्रीमत किसको कहते हैं, मनमत किसको कहते हैं, है ना। बाबा मुरली में कहता है श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, है ना। तो उसके लिए मुझे भी समझ में है ना, अभी आप बताओ अहमदाबाद वाले होशियार होते हैं, है ना। आप बताओ, मैं बताता हूं, एक मुरली बताता हूं, मुरली के पॉइंट, तो जवाब आप देना। बाबा मुरली में कहता है, बाबा का मुरली श्रीमत है ना, मुरली में कहता है बाबा बच्चे तन मन धन सेवा में लगाओ, कहता है ना बाबा की मुरली के श्रीमत है ये। तो भाई जी ने सोचा, मुरली जब सुनते सुनते, आज सेवा में तन तो नहीं लगा सकते, नौकरी में जाना है तो तन नहीं लगा सकता हूं। फिर देखा मन लगा सकता हूं, नहीं मन भी नहीं लगा सकता है कि नौकरी में काम धंधा करना है, मन भी नहीं लगा सकता हूं। फिर देखा बाबा ने कहा धन लगाओ, कहता हां जेब में देखा 100 रुपया है, धन तो लगा सकते है, तन नहीं लगा सकते, मन नहीं लगा सकते, धन लगा सकते है। तो चारों तरफ देखा कि सेंटर में बहुत माताएं जमीन पर बैठी है, खुर्ची सबको मिलनी चाहिए, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, 100 रुपया में एक खुर्ची आ सकती है, चलो मेरी ताकत। तो सीधा मार्केट में गया, एक खुर्ची ला के रख दिया। तो तन से नहीं सेवा हुई, मन से नहीं हुई, धन से तो हुई ना, नहीं हुई। आपको कौन से बाबा मुरली सुनाता है, बाबा ने श्रीमत दिया बच्चे तन मन धन लगाओ, तो मन तो नहीं लगाया आपने, तन तो नहीं लगाया, लेकिन धन तो लगा दिया ना उसने। एक बताओ कोई, लेकिन बाबा की मुरली श्रीमत है ना, मुरली तो श्रीमत है ना, अभी श्रीमत मुरली के अनुसार चलेंगे ना। तो देखो एक माता जी को सुनता हूं, देखो मुरली श्रीमत है तो आप कहेंगे बाबा की मुरली बाबा की श्रीमत है, तो श्रीमत के अनुसार चल रहा है। बाबा ने मुरली में कहा बच्चे तन लगाओ मन लगाओ धन लगाओ, तो इसने देखा तन तो नहीं लगा सकते हैं, मन भी नहीं लगा सकते, आज बिजी है, धन लगा सकता हूं, जो उसकी ताकत है उसने सेवा में लगा दिया, तो क्या तकलीफ हो गया माता जी बताओ। तो श्रीमत मुरली नहीं फिर, हाँ फिर बहन जी को पूछना पड़े, बहन जी का श्रीमत थोड़ी है, कैसे मन मत मिक्स हो गया, श्रीमत मुरली सुनी, मुरली के अनुसार किया। मन से थोड़ी किया उसने, मुरली सुन के किया। अगर मुरली नहीं सुनता था, मन में विचार आया और कुछ किया, तो उसको मन मत कहेंगे। अभी मुरली सुनी, मुरली के अनुसार किया, नहीं चलेगा। अभी माता जी को अलग कहते, भाई बताओ। अच्छा तो मुरली सुन करके श्रीमत नहीं है, अच्छा मनमत आ गया, तो मनमत थोड़ी उसने उसके श्रीमत को किया। चलो अनुभवी बुजुर्गों को पूछता हूँ, बुजुर्ग वाले बताओ, अनुभव होते है ना, चश्मे वाले काका बताओ, है ना श्रीमत हो गया ना, मुरली सुनी मुरली के अनुसार सेवा किया, तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। माताएं बताओ, बहन जी कन्याए बताएंगे, बताओ, भाई कहते नहीं, माताएं कहते, आप बताओ आप क्या समझते हो, चलेगा ना। तो कैसे जरूरत पता चलेगा उसको, उसने देखा माताएं सभी जमीन पर बैठे हैं, अच्छा उनको पूछना चाहिए। हाँ तो मैंने पहले कभी आपने सुना है, हाँ नहीं तो जवाब कोई दे ही नहीं सकता है, नहीं तो मैंने देखा सारी दुनिया में दो प्रश्न है, एक ये है, एक और वो भी सुनाया होगा हमने, कि कभी बहन जी ने कहा दिल से आप सबको ये दे दो, ये दिल से याद करो, दिल से हाथ लाओ का है ना, तो दिल कहाँ है वो भी पता है, तो ये तो सब पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ तो फिर आपको क्या पढ़ा सकता है, पढ़े लिखे हुए हैं। तो इसलिए कहा कि मन मत और श्रीमत ये कोई भी अलग नहीं कर सकता है, इतनी सूक्ष्म चीज है। सब कहेंगे मुरली श्रीमत है, बाबा की मुरली, बाबा की मुरली सुन के मैं कर रहा हूं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर है यहां है, व्यवस्था करने के लिए बाबा ने किसी को निमित्त बनाया है, उनको पूछ के करेंगे तो 100 गुना सफल होता है, नहीं तो एक का एक गुना। क्योंकि पूछता कि यहां बहुत खुर्चिया है, बहन जी ने जगह नहीं इसलिए नहीं रखा है, अब इसने लाया तो कोई काम का नहीं है, तो बहन जी को बताओ, बहन जी बाबा ने श्रीमत दिया है कि बच्चे तन मन धन लगाओ, लेकिन मैं तन नहीं लगा सकता हूँ, मन नहीं लगा सकता हूँ, धन लगा सकता हूँ। तो मेरे मन में विचार आया, एक खुर्ची ला के रख दो, सेंटर में कमी है, बहुत माताएं जमीन पर बैठी है। नहीं भैया, बहुत खुर्चियां है लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए थोड़े माताओं को भाइयों को जमीन पर बिठाया है। आपकी शुभ भावना अच्छी है, आप भंडारे में रखो डालो, और कोई सेवा में काम में आएगा, और कुछ करेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं श्रीमत और मनमत। ये बहुत लोगों को समझ में आता है। इसके साथ और एक बताता हूं, मैंने बताया कि नहीं पता नहीं, एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि सेवा में भी श्रीमत और मनमत आता है। तो सेवा में देख लो, एक सेंटर में एक कुमार था, एक ही कुमार था, और बहन जी आके कहती थी, भाई जी ये कुमार बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, पढ़ा लिखा वो नहीं, राजस्थान का है, आंध्र प्रदेश में जाके साइकिल से बहुत दूर से आता, आज से 15 साल पहले के बाद, तो इतनी सेवा करता है, बहुत अच्छा, एक ही कुमार है। और बहन जी भी कहती थी, वो भी कुमार भी कहता था, मैं बहुत सेवा, सारा दिन सेवा भी करता हूं, नहीं तो अपने उनकी बिजनेस है, कुछ करता है। अभी वो क्या, दौड़ दौड़ के साइकिल से आता है मुरली सुनने के लिए, आगे आके बैठता है नंबर वन, और बहन जी आती है मुरली सुनाने के लिए, देखते, अरे आप इधर बैठ गया, जाओ जाओ पानी भरो, 7 बज गया, पानी आ गया, पानी भरो। सुनाया था ये भी? तो क्यों, सेंटर में क्या होता है कि भोग बनता है, तो कई माताओं को बहने बताती है, आप बनाओ, दूसरी माताओं को लगता है मैं 10 साल पुरानी हूं, मुझे बहन जी बुलाती नहीं है, इनको क्यों बुलाया। कभी भाइयों को लगता है मुझे सेवा नहीं बताया, हाँ सेवा बताओ, मुझे मुरली सुननी है। तो दोनों कैसे होगा, सेवा और ये दोनों होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मुरली सुनते सेवा करते करते, योग भट्टी के लिए अभी आप आए, कोई गाड़ी चलाना जानता है, बहन जी कहेंगे अरे इनको स्टेशन छोड़ के आ जाओ, वो कहेगा मैं तो भट्टी के लिए आया हूं, और बहन जी देखो मुझे सेवा में लगा रही है, तो मन चलेगा ना। तो इसके लिए उस समय क्या करना चाहिए, तरीका है, जवाब है, किसी के पास सुनाया था, याद है। अगर अभी आप भट्टी के लिए आए हो, बहुत लगन से सब कुछ करके आए हो, आने के बाद किसी को अभी अचानक जाना है, तो बहन जी कहेंगे ये गाड़ी जलाना जानता है, इसको कहा तुम गाड़ी लेके बहन जी इनको स्टेशन छोड़ के आओ शांतिवन में। अब ये कहेंगे मेरा तो मुझे क्लास करना था, मैं आया हूं, मुझे भट्टी करने आया, बहन जी देखो मुझे सेवा में लगा रही है, तो मन चलेगा ना, छोड़ के जाएगा भट्टी, छोड़ के चलेगा भट्टी, छोड़ के जाएगा, आया भट्टी के लिए इनको पूछो, चलेगा, विचार तो आएगा, देखो मुझे नहीं और किसी कर सकते ये काम, मुझे, मैं तो भट्टी करने आया हूं, तब क्या करेंगे, उपाय बताओ इसका। अगर ऐसे विचार आया किसी नए को तो जवाब क्या है आपका, दादा बाबा की याद में तो घर में भी करता था, यहां करने, यहां तो भट्टी स्पेशल करने आया है, तो ये छोड़ के गाड़ी चलाए तो घर में भी करता था, और उपाय बताओ। हाँ नहीं, सुनाए तो नहीं दे रहा ना उसको। हाँ तभी तो मेरे का प्रैक्टिकल ऐसा होता है, तो उसके मन में चलेगा मैं देखो भट्टी करने आया था, मुझे तो सेवा में लगाना। ऐसे समय पर एक युक्ति चाहिए, बाबा ने कहा दोनों काम होना चाहिए, युक्ति से मुक्ति है। आपको भट्टी भी करना जरूर है, छोड़ना नहीं, आपको अपना भाग्य भी गंवाना नहीं, और बाबा की सेवा भी नहीं रुकनी है, दोनों काम होना चाहिए, ऐसी कोई युक्ति है। वो मैंने जवाब दिया था वहां, अगर याद है तो बताओ, है ना, दोनों काम होना चाहिए, आपका भी भाग्य गवाना चाहिए, आपको भी भाग्य बनाना है, आप अपने भाग्य बनाने आए, तो वो भी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पास मोबाइल ही नहीं है बहन जी, बहुत गरीब है, बाबा के बच्चे गरीब है। उसके पास मोबाइल ही नहीं है। अभी मैंने सुनाया था उसका भी, वो भाई आप कहेंगे मुरली वो लेके पढ़, वो पढ़ नहीं सकता, मैं पहले बताया, वो मुरली पढ़ नहीं सकता है, पढ़ा लिखा उन्हें भड़ेला नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा। हाँ तो इसके लिए जवाब यह है कि ऐसे समय पर अगर आप सेवा, बाबा ने कहा सेवा करो या करवाओ, आप नहीं जा सकते, आप किसी भाई को, किसी को बोलो भाई जी आप खाली है तो इनको थोड़ा छोड़ के आओ, जब आपको जरूरत पड़े तो मैं करूंगा, नहीं है, यहां बैठे बैठे जैसे बहन जी ने मोबाइल दिया आपको, आप मोबाइल से फोन करो या जाओ कुछ रिक्शा वालों को बोलो आप इनको छोड़ के आ जाओ, आप करो या करवाओ, लेकिन आपको भी भाग्य बनना चाहिए, लेकिन सेवा के लिए ना नहीं करो। कि सेवा ऐसे बाबा चांस देता है कि भाग्य विधाता का, भाग्य बनाने का चांस देता है। और आपको बताओ मैं भी आज इधर बैठा हूं सेवा के भाग्य से बैठा हूं, अपने आप नहीं। आज से 40 साल पहले बॉम्बे में इतना छोटा सा सेंटर था, एक जगह पर गीता बहन थी, हमारी टीचर बैठी है, और एक जगह पर हमारे से तीन फ्लैट थे, एक जगह पर छोटा सा था, तो वहां सेंटर में छोटा जगह एकदम। तो मैं एक कभी इधर रहता था कभी उधर रहता था, सब सबके से नजदीक सेंटर था, तो मैं एक पता था मुझे यहां मैं कम से कम 5-6 दिन 8 दिन रहूंगा, तो नजदीक आके बैठता था रोज सवेरे सवेरे। तो क्लास करने आओ तो जमीन पर कारपेट डाला था प्लास्टिक का, अगर 1 घंटा बैठो आप पाव दर्द करते घुटने, तो मैं तो बैठता हूं, मैंने देखा पाव दर्द कर रहा है क्या करूं, तो रोज 2-2 नैपकिन ले आता था पाव के नीचे डाल के बैठ जाता था। लेकिन मेरे बाजू में ये भी भाई बैठा है, उसको भी पाव दर्द करता है, वो 2-2 मिनट के बाद पाव चेंज करता है और मुझे भी हिला देता, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं फिर नीचे बुलाता है। अब मैं इसके लिए क्या करूं, मैंने अपना प्रबंध तो किया, मैं इसके लिए क्या करूं, और मुझे पता था मैं 8 ही दिन इधर रहने वाला हूं कम से कम। तो मैंने सोचा, छोटी सी बहन एक मुरली सुना रही थी, तो हिम्मत किया, नहीं तो मैं कभी बचपन में कभी किससे बोलता नहीं था, न किससे मिलता भी नहीं था, पूरा 25 साल तक हमारे जीवन में कोई दोस्त नहीं, न कभी किससे मिला भी नहीं है, पढ़ाई पता है, कॉलेज पता है, घर पता है, तो भी फिर हिम्मत किया, नहीं कुछ तो समय सफल होना चाहिए, नहीं तो बैठ भी नहीं सकता, वो भी नहीं बैठ सकता है। तो बहन जी को कहा, बहन जी कितना भी खर्चा हो आप यहां गद्दी या फॉर्म डालो। बहन जी ने कहा कि मैं बड़ी दीदी को बताती हूं, नलिनी बहन घाटकोपर की, तो उन्होंने कहा कि हाँ देखा 5-6 दिन के अंदर फटाफट गद्दी डाल दिया। लेकिन वो बहन जी रोज देखती थी ये एक्यूरेट टाइम पर आता है और इसके अंदर सेवा भाव है। तो दूसरे दिन मुझे बुलाया, कहा आपको दीदी मिलना चाहती है, हमने कहा नहीं 8 बज गए मैं जा रहा हूं अभी मुझे समय नहीं है। दूसरे दिन दोबारा बताया और बड़ी दीदी आ गई, भाई जी 1 मिनट ठहरो, हमने कहा बताओ कि आपको तो मधुबन जाना चाहिए, हमने कहा तो मधुबन तो जा नहीं सकता हूं मैं बहुत बिजी हूं। नहीं आप जाओ, कोई जाने वाले आप एक बहन जाने आप उनके साथ जाओ, ना करके गया मैं। लेकिन लगा मुझे नहीं, मेरा जीवन का लक्ष्य था बचपन से ही कि मुझे बचपन में हमने 7वीं कक्षा पढ़ता था तब मैंने गीता पढ़ी थी, इंग्लिश में हमको बचपन में गीता पढ़ाई थी, तब भगवान कौन कोटि सूर्य सम प्रभ है, तो मैं जीवन में आया हूं भगवान को देखना चाहिए सुनना नहीं। बहुत लोग कहते हैं ये भगवान वो भगवान, किसी ने देखा नहीं है तो मुझे देखना चाहिए। तो मैं आया 2 दिन के बाद, कहा था मैं सोचा था कि 2 दिन के लिए रहता हूं मैं, लेकिन बहन जी ने चिट्ठी लिख के दी थी 8 दिन आप रह सकते हो, और उस समय यहां 50 लोग थे सिर्फ, कोई नहीं थे, कोई सेवा भी से कुछ खास नहीं थी। तो मैं आया 8 महीना मधुबन में रहा, पहली दफा सेवा क्या है पता ही नहीं है, 8 महीना मधुबन में रहा। तो भगवान देता है सेवा का चांस तो देता है, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, कहा क्यों भाग्य विधाता है, अगर उसको मैं कैंसिल करता था दोबारा आज तक इधर नहीं आ सकता था। तो भगवान कैसे भाग्य देगा, ऐसे ऊपर से भेजेगा, बच्चों को किसी न किसी प्रकार की सेवा का चांस देता है। कभी कभी हम अपना स्वार्थ देखते हैं, है ना, समझते नहीं है, निश्चय नहीं पूरा, तो अभी मैं क्यों करूं, मुझे ये करना है, ना हां करते हैं। तब कहा बाबा भगवान भाग्य विधाता, ऐसे सेवा का चांस देता है, ना नहीं करना चाहिए। तो श्रीमत और मनमत किसको कहते हैं, इसको जानना चाहिए। बाबा कहता है मुरली में कहने के बाद भी पूछ के करो, नहीं तो बहुत श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स होता है, मुझे अच्छा लगा, हाँ आप अच्छा लगा, फिर भी पूछ के करना चाहिए। मंजूर, समझ में आया, इसमें दुविधा है तो बताना। अब आया कि श्रीमत की लगाम मन पर लगाओ, तो लगाम कैसे लगेंगे, घोड़े को तो पकड़ सकते हैं, हाथ को पकड़ सकते हैं, मन को कैसे पकड़ेंगे आप, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर आप देख लो आज तक भी एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो कहता है मेरे मन में, उससे पहले देखो 1 महीने के अंदर किसी ने 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया, वैसा कोई पुण्य आत्मा है तो हाथ उठाओ, कोई तो अहमदाबाद में तो पुण्य आत्मा, बापू नगर है, बाबा का नगर है, तो उसमें तो कोई तो होंगे, है ना। तो मुझे उधर एक माता मिली थी, एक माता ने हाथ उठाया था वहां, है ना, एक माता ने उठाया था कि भाई जी मैंने 1 महीने तक गुस्सा नहीं किया करके, हाँ कोई माता थी। हमने कहा एक तो लक्ष्मी तैयार है, बाबा का है अहमदाबाद, कौन
अभी माता ने अभी
अच्छा किसी ने हाथ उठाया था, याद था, अच्छा हाँ देखो किसी ने एक ने हाथ उठाया था, देख लो एक ही आत्मा जाएंगे सत्युग में, बाकी सब बापू नगर अच्छा है इधर ही रहेंगे, जाना नहीं चाहते हो। और बाबा ने अगर कहा वो गुस्सा लेके जा सकते हो तो बताओ जा सकते हैं? तो इसलिए कहा कि गुस्सा तो बहुत बड़ा हो गया, उससे बाबा ने व्यर्थ कहा, व्यर्थ भी चलता आज भी स्लोगन में कहा, तो व्यर्थ को कैसे खत्म करे? बहन जी को देखते बहन जी कहेंगे ना, माता जी कहेंगे ना, भाई जी कहेंगे ना, ये भाई कौन, देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद नहीं आएगा? आएगा। तो मन को कैसे समझा सकते हैं? तो मैंने अपने जीवन में देखा कि 2 तरीके अपनाए, एक बाबा भी कहता है एक ज्ञान से मन को भरपूर रखो, एक मन को खाली नहीं रखो। तो मन को खाली नहीं रखो कैसे बिजी रखे? भक्ति में एक चीज है आपने देखा होगा कि राम 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 करते रहते, इधर उधर देखते भी रहेंगे, माला फेरते रहते हैं, क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे, सही था, क्योंकि भक्ति में चलते शरीर समझ के चलते थे। अभी हम शरीर में उससे ऊपर आत्मा, आत्मा के पास मन है, मन 1 सेकंड भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो कैसे मन को बिजी रखेंगे आप? अच्छे संकल्प आप करना चाहते हो लेकिन आते हैं नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप सारा दिन में 1 घंटा देख लो, 1 घंटे के अंदर कितना व्यर्थ चलता है, कितना शुभ चलता है? 50% 30 सेकंड शुभ चलता है, 5 सेकंड चलता है, देख लो आप कितना व्यर्थ चलता है, कितना फास्ट गति से चलता है ना? तो ऐसे मगन, तब दुनिया ने कहा मन एक तूफान है, ये घोड़ा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर मन को रोकना चाहते हो तो कौन रोकेगा? हाँ, तो मन को भी रोकने वाला वो भी दुनिया में ज्ञान नहीं, साइंस ने कहा कि बुद्धि तो है ही नहीं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस का बुद्धि कहां है? गीता में कहा मन लगाओ, है ना? तो कैसे बुद्धि, बुद्धि का भी ज्ञान नहीं, ये बाबा ने आके दिया है। तो मन एक काम है कि मन के अंदर किसी को देखते विचार आता है, माताजी को देखते विचार आएगा, देखो माताजी ने 2 साल पहले गुस्सा किया था, जरूर किया था, तो क्या करे अभी? मेरा काम क्या? माताजी ने गुस्सा किया, मेरा काम? मुझे बाबा ने क्या कहा? जो मुरली सुनी वो याद होना चाहिए, तुरंत याद आता है बाबा ने कहा था, बच्चे उन्होंने तो गलत किया, आप क्या करेंगे? वो याद होना चाहिए, इसलिए मुरली हम सुनते हैं याद नहीं रहती है। उसकी कोई दवा है? वो भी सुनाया था, मुरली को याद करने की 5 तरीके हैं, 5 में से 3 बताया था, है ना? हमने कहा 5वां जरूरत नहीं है, 3 कम से कम, तीनों किसको याद है, किसी ने किया है? अभी आज मुरली के पॉइंट किसी के जेब में है? नहीं, सुना था, किया नहीं है। कहा था कि रोज ज्ञान अविनाश, बहुत यही डिफरेंस है, ज्ञान इतना है, तब बाबा ने कहा आप कहते हो ड्रामा फिक्स है, तो बाबा ने कहा बच्चे आपके हाथ में तकदीर की लंबी रेखा जितनी लंबी खींचना चाहते हो वो भी कलम दिया है, चाहे तो जितना लंबी लकीर खींचना चाहते हो आप भाग्य की रेखा खींच सकते हो, लेकिन हम ड्रामा करके स्टॉप हो जाते हैं, मना करना नहीं चाहता, आदत ही इतना आदत हो गई है, जानते है, सुना है लेकिन किया नहीं, है ना? तब कहा था कि मुरली के, तब बाबा ने आपको दोबारा सुनाने के लिए इधर भेजा, नहीं तो आप सब पास थे, आने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो बहन जी ने सोचा दोबारा भट्टी करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी भूलना नहीं, अभी याद रखो और देखना, एक मुरली का, मुरली बहुत ध्यान से सुनो और मुरली में कितना इंटरेस्ट रहता है, नहीं तो क्या मुरली बाबा वही सुनाता है, याद करो बिंदु समझो, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनते रहो, सुनते सुनते एक मुरली के पॉइंट लो, जो मुझे क्या करना है आज, आपके हरेक कमी, हरेक जानता है मेरी कमी क्या है, उसके अनुसार एक मुरली के पॉइंट ले लो और माताएं डायरी में लिखो, किचन में सामने रखो, और भाई क्या करो, लिख करके जेब में रखना, डायरी एक जगह रहता है, आप एक जगह रहते हो, है ना? ऑफिस में जगह, किसी ने पूछा मुरली क्या सुनाई थी, सोचता हूं, सोच के बताता हूं, आएगा अंदर से, आएगा ही नहीं, तो डायरी में लिखा है तो जेब में रखो। और बाबा ने हमें 2 हाथ दिया है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी,
शरीर को आप 3 दफा खिलाते हो, आत्मा को कितने दफा खिलाते हो? 1 दफा सवेरे मुरली, तब गुस्सा नहीं जा रहा है। शरीर को 3 दफा खिलाओ, गुस्से को 3 दफा खाना मिलेगा, तो माताजी को छोड़ के क्यों जाएगा वो? माताजी के घर में 3 दफा खाना मिलता है ना? तो हेल्दी शरीर को आप 3 दफा खिलाओ तो आत्मा को 1 दफा, तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर माना 5 विकार, 5 विकार में गुस्सा आ गया, गुस्से को 3 दफा खाना मिलेगा तो आपको छोड़ के जाएगा वो? फिर आप कहेंगे खाना नहीं खाए? नहीं, शरीर को भी 3 दफा खिलाओ, आत्मा को भी खिलाओ। तो कैसे 3 दफा खिलाएगा भाइयों में से कौन बताएगा? 3 दफा आत्मा को खाना खिलाना चाहिए। कैसे खिलाएंगे भाई? बताएंगे अभी, माताओं ने बहुत बताया, भाई बताओ। हाँ, एक और 3 दफा खाना चाहिए, एक बताया, 3 पॉइंट सुनाया। चलो ठीक है, अभी याद रखना, भूलना नहीं, और इसको अभ्यास करो। यही त्यूर बाबा कहता, त्यूर पुरुषार्थ, फास्ट जाओ। पहले साइकिल पर जाते थे, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, अभी प्लेन से उड़ के जाना है। तो फास्ट जाना चाहते हो, 1 विधि बताया था, 2 विधि, 3 विधि, ऐसे 5 विधियां है, और आप कर सकते हो। कम से कम 3 करो कहता। 1, रोज मुरली के पॉइंट जेब में रखो। जब नाश्ता करने बैठते हो, इधर से जाते नाश्ता करने बैठेंगे तो ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है? खाली है। उसको भी काम देंगे ना, वो आत्मा को पढ़ा रहा है, बाबा ने आज कहा था बच्चे गुस्सा नहीं करना, हो गया, खाना अंदर गया, वो काम करेगा। फिर दिन में खाना खाने बैठते हो, खाना आते ये हाथ नहीं जाता, यही हाथ जाता है, ये हाथ जेब में डालो। रात को भी खाना खाते, सवेरे खाया था, शाम को क्यों खा रहे हो? पेट तो एक ही है, 2 नहीं है, भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है। सवेरे सुनावा, शाम तक याद नहीं रहता है। तो 3 दफा खिलाना चाहिए, कम से कम 3 दफा। आज के 1 मुरली के पॉइंट आप 1 महीना करो, देखो गुस्सा आपको छोड़ के कैसे जाता है। सिर दर्द अपने आप नहीं जाता है, सिर दर्द को छोड़ दो करो, जाएगा, निकल जाओ 100 दफा को जाएगा, गोली लेनी पड़ती है, दवा चाहिए। तो यहां भी ये आत्मा की बीमारी की दवा है। तब बाबा ने कहा ज्ञान ये संजीवनी बूटी है, ये 3 दफा सुंगाओ, ये दवाई ले लो, ये गोली है। तो 1 मुरली के पॉइंट कम से कम आप में से कोई करके देखा, अभी उधर सुने, उधर आधा सुना था, किया नहीं, अभी मधुबन बाबा के घर में आए, देवता बन के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहन जी दोबारा लेके नहीं आएंगी, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा 1 दफा सुना, आधा एक कान से सुना, अभी दोनों कान से सांभलो, है ना? 1 महीना कम से कम, ज्यादा नहीं, एक कम से कम कहते हो 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप मुरली के पॉइंट जेब में 1 पॉइंट डाल के देखो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, देखना 15 दिन के अंदर गुस्सा आपको छोड़ के कहां चला जाता है। कितना भी कोई आपके ऊपर बरस रहा है, गुस्सा करता है, आपके दिल से मुख से आएगा नहीं, देखना आप करके, ये दवा है। लेकिन मुरली के पॉइंट, एक ही पॉइंट, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 1 दफा पढ़ने से नहीं, 1 गोली खाने से नहीं, कम, डॉक्टर भी कहता है कम से कम 1 हफ्ता दवा चाहिए, ये दवा है। अगर आप और ज्यादा कहते हो और तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, तब कहा दूसरा, और भी फास्ट जाना चाहते हो, भाई जी 15 दिन क्यों, 1 हफ्ते में छोड़ना चाहते हैं हम, और कुछ कर सकते हैं? हाँ और भी है। तब कहता है आज के दुनिया में हरेक के पास मोबाइल है, यूज करो। कोई माता बहन जी फोन करते 1 घंटा बात करो, उसके बाद तो जेब में पॉइंट है, भाई जी हो गया, ठहरो आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, पढ़ के बताओ, याद नहीं रहेगा, है? अगर वो बाबा का बच्चा है, ये भी करते हो भाई? करते कोई, किसी ने किया तो बताओ? नहीं है ना, बरसात आया पानी चला गया, सुनाते रहो क्योंकि बहुत आधा कलप की आदत बन गया ना भक्ति मार्ग में। इसलिए याद रखना, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, लिस्निंग इज नॉट एवरीथिंग। कितना भी आप सुन लो, कितना भी पढ़ लो, आचरण में नहीं आएगा। तब कहता कितना भी खा लो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम करने के तरीका चाहिए। इसलिए कहते थोड़ा सा खाओ, हजम करो, तब शक्ति बनती है। ईट लेस डाइजेस्ट मोर, है ना? तो यहां भी थोड़ा सुना, बहुत सुनते ना तो याद नहीं रहता है कि ये करो कंफ्यूज होता है। तो एक ही पॉइंट ले लो बस, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आ सकते हैं। भाई तो रोज एक सुनते सुनते एक पॉइंट छोटे से कागज में, मैं आपको नहीं कहा पहले मैंने किया है, अनुभव बता रहा आपको, मैंने किया है तो बताता, तब मुझे कभी भी आप पूछ लो। अब भी देखो कल की परसों जर्मनी से किसने फोन करके पूछा, भाई जी परसों मुरली में बाबा ने ये कहा था, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों कहा। अभी एक 15 दिन पहले कहां से, बर्मा से फोन करके पूछा, बाबा ने कहा था कि क्या कहा पता है बाबा ने, जो काक भूषण कहा मुरली में, तो भाई जी काक भूषण क्या है, कहां से, बर्मा से फोन करके पूछा, भाई जी आज बाबा ने मुरली में कहानी सुनाई, ये कहा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, इसका अर्थ क्या है। तो हर शब्द पर याद रखना पड़ेगा, तुरंत उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर रहे हो आप, बाबा ने मुरली सुना के क्या कर रहे हो। तो मुरली पर ध्यान, कोई नया पॉइंट आया तब बाबा भगवान पढ़ा रहा है, तब बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने आ रहे हो। मनुष्य मांगने के लिए किसके पास जाता है, देवताओं के पास है, पढ़ने के लिए कहां जाएंगे, सद्बुद्धि दे दो किसको कहेंगे, आप देवताओं को कहेंगे ना। तो देवता बना रहे बाबा, अपने आप नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। तो कम से कम अभी यहां आए हो, कहीं सिंपल, इसमें कोई मेहनत तो नहीं करो, आपको एक घंटा बैठो, ये नहीं कहा पाव दर्द करो एक घंटा योग करो, वो तो नहीं कहा, सिंपल चीज कहा जो कर सकते हो। इसमें कोई कठिनाई है बताओ, जो भाई कहते हैं कठिनाई रोज मुरली के पॉइंट एक जेब में रहे, वो भी 15 दिन का मिनिमम, मैक्सिमम एक महीना, कोई तकलीफ है, तकलीफ है तो बताओ, कठिनाई है कोई, लिख नहीं सकते है, रख नहीं सकते भाई जी, हम याद रखेंगे सारा दिन, ऐसा हो सकता है नहीं। तब आप औरों को बता सकते हो, घर बैठे हुए आप सेवा कर सकते हो, किधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाओ सेवा के लिए आज जरूरत नहीं है। तो घर बैठे कोई फोन करता है, बात करो, बिजनेस, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, ज्ञान में नहीं चलता भी है तो सुन लो, उससे बिजनेस की बात करो, फिर कहो भाई जी मैंने आज एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ, हाँ बताओ कहेगा, भगवान का नाम नहीं ले लो, किताब में लिखा था बताओ, बताते नहीं न्यूज़पेपर में आज एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बताते हैं ना, शुभ समाचार दे दो, इससे आपका भी कल्याण उसका भी कल्याण, और बाबा कहेगा ये मेरा अनन्य बच्चा है, वफादार है, श्रीमत पर चलता है, श्रीमत ध्यान में रखता है, यूज भी करता है, औरों को भी दान करता है। नहीं तो श्रीमत सुना न स्वयं यूज किया न दान किया, ये अविनाशी खजाने हैं। और जितना सारे दिन में मुरली के पॉइंट सुनाते हो आप, देखना जो बाबा ने कहा सदा खुश रहो, अपने आप खुश नहीं, आप किसी को भी मुरली के पॉइंट सुनाओ, देखो उसका चेहरा खिल जाता है ना, और आपको भी लगता है, आपको भी खुशी होती है, मैंने आज कुछ किया, दान किया है ना। तो क्या दान करो, पहले ये ज्ञान का दान करो, और भी एक दान बताऊंगा, तो ये दान करना चाहिए। तो श्रीमत है बाबा के, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी, जो ज्ञान में चले न चले कोई भी हो, सुनाने का तरीका चाहिए, समझ में आया। दो सुनाया, तीसरा सुनाया था माताएं कहते भाई जी हमारे पति बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो कैसे सुनाएंगे, ये जवाब माताएं दे दो, अगर पति माताएं कहते भाई जी हम ज्ञान में चलते हैं, पति नहीं चलता है, बच्चे नहीं चलते हैं, उनको ज्ञान सुनाओ तो सुनते भी नहीं है, तो कैसे सुनाएंगे आप। अच्छा देखो माता जी को याद है, करते हो आज रोज, हाँ देखो माता जी को याद है, हाँ तो ये करना चाहिए। जब तब कहा हाथ से खाना खिलाते हो तो मन क्या कर रहा है, मुख से परिवार वालों को ज्ञान नहीं सुनाना, क्यों वो जानते हैं माता जी रोज मुरली सुनती है, घर में आके गुस्सा भी करती है, माता जी का उद्धार नहीं होगा मेरा कैसे होगा, इसलिए पति बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, इसलिए मुख से नहीं सुनाना। तब का सुनाना तो जरूर है, सेवा तो करनी है, कैसे करो, मन से करो, मन का आवाज बहुत तीव्र गति से सुन जाता है ना, तो ये काम करना चाहिए, कर सकते हैं ना। तो इसलिए कहा ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए परिवार वालों को, नहीं तो आप भी यूज नहीं करते हो, दूसरों को भी नहीं सुनाते हो, तो क्या फायदा, आपको भी याद आएगा और परिवार वालों को। डायरी लिख करके किचन में रखो और पढ़ो, खाना खाने बैठो, तीनों टाइम। माताएं तो लिख करके रख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो फोन करके पूछ लो किसी से, नहीं कर सकते अड़ोस पड़ोस में कोई है कुछ को पूछ लो, है ना, प्यास लगी पानी कहां कहां से ले आते हो, लाते हैं ना कि घर के नजदीक मिलता नहीं, घड़ा लेके कहां कहां जाते हैं, तो ये तरीका चाहिए।
और ज्ञान भी इसके लिए चाहिए कि मन संसार में चलते कलयुग में हर सेकंड हर कदम कदम पर विघ्न है, समस्या है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, हर कदम पर है, तभी इसको कलयुग का। तो ऐसे समय पर मन में बहुत विचार चलते हैं, तो मन को कैसे समझाएंगे आप? अगर मुरली के पॉइंट याद है तो बाबा ने क्या कहा था, कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, 10 दिन पहले क्या कहा था, तो याद आता। ज्ञान के पॉइंट्स के द्वारा मन को समझा सकते हो। अगर सामने वाला ऐसा करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बाबा ने बताया है वो याद, 10 साल पहले कहा था कि बच्चे ऐसे जैसे, उदाहरण के लिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत जन्मों का बोझ आपके सिर पर है, तो कैसे उतारेंगे आप? और पता चलता है बहुत जन्मों का बोझ आपके सिर पर, कैसे पता चलेगा बोझ है नहीं, उतर गया पूरा? अभी कितना है पैसा तेरे पर, कैसे पता चलेगा? अभी भी कितना बचा है, कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं। अभी भी सोते समय 5 विकारों के स्वप्न आते हैं। किस किस विकार का ज्यादा आता है, तो वो और ज्यादा संस्कार भरा हुआ है। जो अंदर भरा हुआ है वो पहले स्वप्नों में आता है, फिर मन में आता है, फिर कर्मों में आता है। पुण्य आत्मा उसको कहते हैं, कर्मातीत आत्मा उसको कहते हैं। कम से कम कोई भी कहता है 1 महीना 5 विकारों के स्वप्न नहीं आते, मिनिमम मैक्सिमम 6 महीना, वो कह सकता है मैं पुण्य आत्मा हूं। और उसको पांचों तत्व एक बाल भी हिला नहीं सकता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कुछ हो रहा है तो कुछ हिसाब किताब है, कुछ ले आया था। जैसे पानी लेते हो तो उसका मीटर पैसा भरना पड़ता है ना, तो 5 तत्वों का भी हम उपयोग लेते हैं, उसका भी ऋण है। देश ऋण है, मात्र ऋण है, ऋण 6 प्रकार का ऋण है, कैसे करेंगे आप? तब बाबा कहता है बच्चे ऐसे योग करो तो मैं ऋण मुक्तेश्वर हूं, मैं सब आपका ऋण मुक्त करूंगा, लेकिन मेरे श्रीमत पर चलो, मुझे निरंतर याद करो। तो कैसे याद करेंगे, मैं भी करना चाहता, कोई माताएं बताओ, भाई बताओ, निरंतर बाबा को याद कैसे कर सकते हो, कोई उपाय है तो बताओ। है ये बाबा का नंबर 1 श्रीमत है। बाबा ने कहा बहुत धन ले लो, बच्चे नहीं चाहिए। क्या चाहिए बाबा को, किसकी मदद चाहिए? योगी बच्चे चाहिए, योग की मदद चाहिए। अगर योगी है उसकी सेवा, चलन, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ सेवा है। योग नहीं है तो नहीं है, तो योगी बच्चे चाहिए। तब बाबा कहते हैं बाबा का निरंतर योग करो। कैसे करेंगे आप? सवेरे 1 घंटा करेंगे, शाम को 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, निरंतर योग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है, कौन बता रहे? हाँ, कैसे करेंगे बाबा? कल सब्जी काटते काटते याद आएगा ना, अरे नमक डालना है। मार्केट में जाके सब्जी काटते काटते याद आएगा, अरे आज उसको फोन करना था, मार्केट से ये सब्जी लाना पड़ेगा। निरंतर नहीं हो सकता है। हो सकता है, तरीका बताओ। हो सकता है तो हाँ, लेकिन वो सदा नहीं, जब बैठेंगे आप तब मन बुद्धि को एक करेंगे, सदा नमस्ते करते ऐसे नहीं रहते। जब हाथ जोड़ना है, कोई मिलेंगे तो हाथ जोड़ेंगे ना, तो मन बुद्धि को जोड़ेंगे जब योग में बैठेंगे तब होगा, निरंतर तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं निरंतर करो, श्वासोश्वास का भक्ति में भी तो नहीं होते। 1 घंटे में 60 मिनट है, 5 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 60 मिनट तो नहीं हो सकता है। ऐसे कोई उपाय है तो बताओ। और बताया था आपको उपाय, बताओ, याद नहीं है? श्वास लेने, श्वास पर ध्यान जाएगा ना, तो वो तो नहीं होगा। पानी पीते सदा तो पानी पीते नहीं, 1 घंटे में 1 गदा पानी पीएंगे। देखो आप अगर इधर से नीचे जाते हो तो आप इधर से उधर, 1 2 कोई तो कोई मिलेगा ना। कभी भी 2 तरीके सुनाए थे, आपके सामने घर में रास्ते पर चलो, कोई ना कोई आपके सामने है। 2 तरीके बताया था, बहुत तरीके हैं बताया था, उसमें से 2 मेन है निरंतर करने के लिए। 1 कहा था रास्ते पर चलते फिरते, घर में बहू है, बच्चे है, कोई भी है, किसी पर नजर गई,
एक व्यक्ति भी मेरे आंखों से खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। देखते ही शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो। पति है, बच्चे है, बहू है, अड़ोस पड़ोस वाले नजरों में है। हाँ, अभी माताजी कहती है भाई जी हमारे घर में कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूं, तो मैं किसको दे दूं? उसका भी सोल्यूशन बताया था। क्या बताया था वो? अगर माताजी कहती भाई जी मेरे घर में कोई नहीं, मैं किधर जाती नहीं, मैं अकेली हूं, तो मैं किसको दान दे दूं? उसके लिए क्या तरीका बताया था? हाँ, उसको मिले तब दे दिए, कोई नहीं है, माताजी घर में अकेली है, तो कैसे करो वो बताओ। हाँ, अकेले माता है, कोई नहीं है, तो कोई तो मन तो खाली नहीं रहता है। 10 साल पहले माताजी को किसी ने गुस्सा किया था, 10 साल पहले किसने सुख दिया था, 25 साल पहले किसने दुख दिया था, कुछ बोला था, मन खाली नहीं रहता है। सब्जी काट रहे हो, कपड़े धो रहे हो, स्नान कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, याद आता है मन में किसी ने किसी की, है ना? तो कोई सामने नहीं है तो भी किसी की याद आया, आने दो, गलत नहीं, आएगा, अंदर है। आते ही बाबा इस माताजी ने बहुत परेशान किया था, लेकिन वो माता कौन है? बाबा आपके बच्चे है, इस माताजी को ऐसी शक्ति दे दो दोबारा और किसी को ऐसा ना करे, आप इस माताजी को शांति की शक्ति दे दो। हो गया ना? आएगा मन, मन में व्यर्थ न करो, आपके हाथ में नहीं, मन आपके हाथ में नहीं, लेकिन मन को ट्रीटमेंट दे दो, समझाओ, सिखाओ। मन चंचल है तो उस चंचल को रोको नहीं, दबाओ नहीं, समझाओ। तो समझाने के लिए ज्ञान चाहिए। मुरली अगर याद है बाबा ने कैसे कहा, क्या कहा, वो अगर बुद्धि के अंदर आया, इसलिए कहा आपको 1-15 दिन आप करो, इतनी मुरली के पॉइंट्स होते हैं बाबा के, तो वो पॉइंट्स सारे आपके जीवन में आएंगे। उसमें से दिन में एक ले लो, बस, दो भी नहीं चाहिए। एक एक बूंद बूंद इकट्ठा करो, तालाब बन जाता है, एकदम नहीं बनता है। एकदम बहुत मुरली पढ़ो, सारा दिन मुरली पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं, सब याद नहीं था, हमारी बुद्धि की कैपेसिटी इतनी नहीं है, एक बूंद बस। तो उसको आप भी घोटते रहो, पूछते रहो, अपने आप को भी पढ़ाते रहो, औरों को भी पढ़ाते रहो, समय आएगा, 10 साल के बाद याद आएगा, अरे बहुत जन्मों का बोझ है उतारना है। बाबा ने कहा 1 का 10 गुना दुआ दे दो। कहां कहां मुरली में बाबा कुछ कहता जाता है, देखो अभी इस साल बाबा ने क्या कहा, अगर माता जी बहुत समस्या है, बहुत परेशान है, तो क्या करो कहा था। इस साल बाबा ने एक नया तरीका बताया, बहुत दुख है, समस्या है, परिस्थिति है घर में, तो क्या करो कहा बाबा ने, सहज तरीका बताया था, बताओ कौन बताएगा। इस साल की मुरली तब कहा, हमने भी एक ही बाबा के समय पढ़ी, एक ही दफा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दफा एक मुरली से पॉइंट विशेष ले लो, उसको आचरण में लाओ, तो ये संस्कार सारे कलप काम में आएगा। नहीं तो भगवान परमधाम से आके पढ़ाता है, मैंने पढ़ाया और कोई उसका वैल्यू नहीं, उसको वफादार बच्चा कहेगा, ईमानदार कहेगा, लाडला बाबा कहे, बच्चा कहेगे नहीं, है ना। तब कहा बाबा ने कहा, मेरे दिल तक नशीन कौन बनेंगे, जो बाबा ने श्रीमत दिया उसको एक ही ले लो, थोड़ा से ले लो, उसको आज आचरण में लाओ, कल सवेरे अलग देगा। नहीं तो रोज बाबा कहता, मैं रोज पढ़ाने नहीं आता हूं, कभी कभी आता हूं, चलेगा? रोज मुरली नहीं सुनाता, हफ्ते में एक दफा सुनाते है। पहले बाबा यहां आता था, रोज आता था, दो दो तीन तीन दिन में, हफ्ते हफ्ते में आता, अभी देखो 15 दिन में एक दफा आता है, कि बच्चे सुनते करते नहीं है। अभी आगे जाके 2 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, चलेगा? तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उपाय बताया था, क्या बताया था, इस साल मुरली में बाबा ने, अगर कोई समस्या हो, कोई दुख हो, तो क्या करो, किसी को याद नहीं है, भाई तो बताओ। बाबा ने कहा था, बच्चे मधुवन पहुंच जाओ, लेकिन तन से नहीं, मन से पहुंच जाओ। आप कहेंगे बाबा ने मधुवन कहा तो मैं आता हूं, नहीं, तन से नहीं, मन से मधुवन पहुंच जाओ, है ना। बाप आपको खुश कर देगा, हल्का कर देगा, है ना। मधुवन बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सुप्रीम सर्जन का हॉस्पिटल है, तो मन की बीमारी ठीक होती है यहां, है ना। इसलिए बाबा ने कहा, समस्या संसार में आती है, नहीं ऐसी नहीं। इस साल बाबा ने कहा, हर साल बाबा नए नए पॉइंट्स बताता है, और जो बच्चे संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो आओ बस ट्रेन में बुकिंग करो, पैसे नहीं है, कोई नहीं, मन से आ जाओ, याद करो भट्टी में मधुबन में आए थे, कैसे बैठे थे, कहाँ बैठे थे, क्या सुनाया था, शांति स्तंभ में बैठे था। देखो मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति मिला, एक दफा मधुबन में आया था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है बॉम्बे में, एक दफा आया था शांति स्तंभ में देखा था उसने, तो मुझे कहता है कभी मधुबन दोबारा नहीं आना, सेंटर में गया, कहता मैं रोज मधुबन पहुंचता हूं उसके बगैर नाश्ता नहीं करता हूं। हमने कहा कैसे कराते हो, कहते एक बार मधुबन में शांति स्तंभ देखा, रोज उठते स्नान करते मैं शांति स्तंभ के सामने खड़ा होता हूं। और पुरानी कही के एक मुरली का किताब है, वो मुरली का खोलता हूं, एक पॉइंट पढ़ता हूं, फिर नाश्ता करने जाता हूं। ऐसे भी बाबा के अनन्य बच्चे है ना। एक बार जब बाबा ने कहा बच्चे मन से पहुंच जाओ, दवा देता है, समस्या है, परिस्थिति है संसार में, तो ये बाबा का श्रीमत याद रहेंगे तो करेंगे ना। समस्या आई याद ही नहीं है, दवा दे के गया बाबा, घर में दवाई पड़ी है, लेने के लिए याद ही नहीं, तो क्या फायदा, फायदा है दवा है, याद चाहिए। तो याद को बुद्धि को स्वच्छ करने के ये तरीका है कि मुरली कम से कम एक पॉइंट सारे दिन में तीन दफा अपने का पढ़ा मिनिमम का मैंने, और ज्यादा तीव्र गति से करना चाहते हो कम से कम 10-15 लोगों को मुख से, इसलिए 50 रुपया उसके लिए निकाल के रखो, ये 50 रुपया आपको सारे क्लब में उसका ब्याज मिलेगा। 50 रुपया मुरली के पॉइंट सुनाने के लिए निकाल के रख दो, ये सारे क्लब के लिए आपका भाग्य बनाएगा औरों का भी बनाएगा। 50 रुपये इसके लिए उसके लिए खर्चा करते हो तो खाया पिया चला गया, तो मुरली सुनाने के लिए मुझे मोबाइल से मुरली सुनाने हैं ये किसी न किसी को, इसके लिए 50 रुपये निकाल के रख दो, इसमें कंजूसी नहीं करो, ये आपका भी भाग्य बनाता है औरों का भी भाग्य बनाता है। जिसको सुनाया वो भी कहेंगे देखो मन में बहुत व्यर्थ चल रहा था, आपने मुरली के पॉइंट सुनाया बहुत अच्छा हो, क्यों ये संजीवनी बूटी है। तब बाबा कहते हैं ये ज्ञान के एक एक रतन हीरे है ना, इम्पेरिशेबल का अविनाशी है, ये विनाश होने वाला नहीं है, तो इसको जानना चाहिए। इसको कहा श्रीमत, इसको कितना यूज करते आप, अड़ोसी पड़ोसी हो किसी को सेंटर में, आप ट्रेन में आ रहे हो कभी कोई मिलता है तो बाबा ने कैसे ज्ञान सुनाओ कहा था, क्या सुनाओ कहा था, इस साल कैसे पढ़ाओ कहा था, वो याद रखना चाहिए। नहीं पुरानी बात है वही चल रही है, 7 दिन का कोर्स करो सेंटर में आओ, 7 दिन किसके पास समय है ना। तो क्या सुनाना चाहिए, कैसे सुनाना चाहिए, मेरे हाथ में कोई आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताओ कि आपको नहीं, हम करते हैं फिर आपको बताए। इस साल बाबा के टर्न में एक इंदौर से बॉम्बे से आए हो, न 7 डेज कोर्स पता न ज्ञान पता कुछ भी पता नहीं, ब्रह्मा कुमारी नाम भी पता नहीं, उसको किसी ने कहा कि आप मधुबन में आ जाओ, दोनों भाई इधर से, दोनों डॉक्टर है दोनों युगल, बॉम्बे से इधर है इंदौर के, बॉम्बे में कुछ काम करता है, किसी ने कहा कि आप आ जाओ मधुबन में शांतिवन में बाबा से मिलने आए। और खाना खा रहे थे, खाना खाते समय उधर का एक व्यक्ति हमको मिलने आने वाला था, वो फोन लगा रहा था खाना खाते ही कि भाई जी मैं 9 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं, हमने कहा 9 बजे आओ, खाना खा के हम आते हैं। तब वो भाई ने उनको पूछा भाई जी वो एक बहन ज्ञान सुना रही थी अभी हॉल में, वो क्या सुना रही थी, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हो सकता है क्या। तब उन्होंने उनको पूछा भाई जी आप कहां से आए, कौन से सेंटर में जाते हो, सेंटर क्या होता है पता ही नहीं हमको, सेंटर हम कभी गए नहीं, तो कहां से आए हो, तो हम बॉम्बे से आए, तो ब्रह्मा कुमार आश्रम को जानते हो, सुना है किसी ने हमको बुलाया हम आए इधर। तो उसने कहा चलो को हर जाने मैं, हम किसको मिलने जाने वाले आपको ले आते हैं, उनको लेके आए और बिठाया, दोनों डॉक्टर है। तब उनको आधा घंटा ज्ञान सुनाया तो भगवान आता है क्या, भगवान आ सकता है क्या, हमने कहा आज अपने आंखों से आप देखना फिर मुझे आके बताना, और एक ही दिन के लिए आए थे। तब उनको बताया, आ करके मुझे खास बताया कि भाई जी जो ब्रह्मा बाबा का यहाँ चित्र दिखाया वो नहीं था, आपका हमारे कमरे में एक बुजुर्ग चित्र दिखाया बाबा का, वो आज आए थे मैंने देखा। गुलजार दादी एक दादी बैठी थी, बहन जी मैं देखते देखते वो बहन जी नहीं थी और ये बाबा नहीं था, और एक बाबा का चित्र बुजुर्ग है लंबा सा गाल दबे हुए है, वो बाबा आया था मैंने स्पष्ट देखा। बाबा का अनुभव करके जाते हैं। आप उसको कहो अभी नहीं बाद में आओ कभी पता नहीं, 7 डेज कोर्स करके आओ, है ना, आपके हाथ में आया हुआ व्यक्ति खाली जाना नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल आपको ऐसे एक ने 1000 सुनाता हूं, हजार सुनाता हूँ, ऐसे मैं आपको और एक बताऊं, श्रीमत कहाँ काम करता है, ऐसे मुझे याद है अभी जर्मनी में एक छोटी सी लड़की बचपन में यहाँ आती होंगी मधुबन में, बच्चों के प्रोग्राम में आए होंगे, कभी क्लास किया होगा, सुनाया होगा, टोली खिलाया होगा, वो शादी करके जर्मनी में दिया, पंजाब की थी ये, कहाँ हॉस्टल मोदी नगर में है दिल्ली में, वहां से आई आती थी, वहां से शादी करके जर्मनी में दिया। वो अभी 5 साल पहले मधुबन में आई किसी कारण से, और किसी को पूछा मुझे रामनाथ भाई से मिलना है, कोई एक लंदन वाला भाई मिलने के लिए मुझे शांतिवन आ रहा था, उसने कहा मैं भी आऊं, उनके साथ आया, मिली, भाई जी मैं बचपन में आपको देखा था, आपने सुनाया था, अभी मैं शादी करके जर्मनी में हूँ, तो सेंटर में जा नहीं सकते, पति नहीं मत सुनता है, लेकिन हमने कहा पति कहाँ है, क्योंकि पंजाब में आज आने वाला है, एक दिन के लिए शादी के लिए आने वाला है, तो भाई जी आप उनसे बात करेंगे, हमने कहा हाँ, तुमने तुरंत फोन से बात किया, तो हमने कहा अरे लक्ष्मी तो यहाँ आई, नारायण कहाँ है, देखो लक्ष्मी मुझे लेके नहीं गई, तो आप कहाँ हो, तो आप, मैं तो पंजाब में हूँ, अभी आज शादी करके कल जाने वाला हूँ, हमने कहा एक काम करते, तो लक्ष्मी को देखना चाहते हो क्यों, भगवान को देखना चाहते हो, तो लक्ष्मी तो भगवान से मिलने आई है, तो आप भी अगर आ सकते हो आज शाम को निकलो वहां से, पहुंच जाएंगे रात तक, कल सवेरे तक पहुंच जाएंगे, कल शाम को बाबा आए, परसों सवेरे जाओ, मैं आ सकता हूँ, हमने कहा हाँ आ सकते हो आओ, आया 2 बजे पहुंचा, बाबा शाम को आ रहा है, 2 बजे को आने के बाद 15 मिनट के उसको 7 डेज कोर्स, 7 चित्र दिखाया, सुनाया, बाबा कैसे आता है बताया, और कैसे बैठो बताया, बाबा से मिला, गया गुलजार दादी 1 साल के बाद गई, 200 लोगों की खाना, वो एक्सेट टैक्सी का ड्राइवर था, वो छोड़ करके 200 लोगों के सेंटर में खाना बनाया, आज सारा सेंटर की सेवा, हर हफ्ते में एक दफा जर्मनी से यहां से फोन से क्लास कराता है, सेंटर की हर गाड़ी चलाता है, सेंटर की खाना बनाना सब कुछ काम करता है। कौन आगे गया, बचपन का बीज डाला, आज इतनी टीचर भी इतनी उसको खुश है, स्वदेश बहन वो कहता सब काम करता है, मुझे बता मैं सब्जी ले आता हूँ, सब्जी काटता हूँ, खाना 200 लोगों का खाना, एक ऐसा साधारण ज्ञान भी नहीं, इतना नहीं तो भी सब कार, उसका एक्सीडेंट हुआ, हड्डी हड्डी टूट गई, 3 महीने के अंदर खड़ा होके सबसे पहले बाबा से मिलने आया, ऐसे चमत्कार है ना, सबके अंदर है। तो तब बाबा कहता है बच्चे योग्य बनो, कैसे बनेंगे, किस आधार से योग्य बनेंगे, किस आधार से बनेंगे, श्रीमत मुरली, मुरली के पॉइंट आपके दिमाग में बुद्धि में रहना चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग में आज पैसा संसार, इसने ऐसे बोला उसने ऐसे बोला, यही घूमता है। आप देख लो 1 घंटा भी आपका मन विदा व्यर्थ के बिगड़ रहता है, 1 घंटा ले लो आप, अभी सब लोग इधर बैठे हैं, मुझे लगता है कितने तो अहमदाबाद जाके भी आ गए, माता जी तो अहमदाबाद जाके भी आ गए, एक दफा मुझे लगता है यहाँ बैठी है, मुझे ही देख रही है, एक दफा घर में देख के आए, पति ने खाना खाया कि नहीं है, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, एक दफा चक्कर लगा के आ गई है ना, ऐसा है, इतना मन फंस जाता है, क्यों, जहां संबंध जुड़ा हुआ है। तब बाबा ने कहा सर उस संबंध मेरे से जोड़ो, मैं आपका साजन हूं, मैं आपका पति हूं, मैं आपका बच्चा हूं है ना, मैं आपका दोस्त हूं, सर उस संबंध जोड़ेंगे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ है, सब है, ऐसे छोड़ना नहीं, पति को छोड़ के नहीं, बच्चों को छोड़ के नहीं, सब कुछ रहते हुए भी मेरे नहीं, ये भगवान के बच्चे है, मैं उनकी सेवा करता हूं, भगवान के बच्चे की सेवा कर रहे हो। पति बहुत गुस्सा करता है, पति आप कहने बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो, इसको सदा शांत सुखी बनाओ, इसका कल्याण करो, मुख से बोलना नहीं, मन से उसके पर रोज एक एक बूंद डालते जाओ, आज नहीं तो कल शांत हो जाएगा, मुख से बोलना नहीं, तो ये कब, ये बाबा का नंबर 1 श्रीमत है, और कुछ नहीं करना, मेहनत करना सिखाते नहीं बाबा, चलते रहो फिरते रहो, निरंतर याद जो कहा, चलते हुए यहां से वहां तक जाते हो आप, कितने लोग मिलते हैं, कोई भी हो, देखते ही बाबा इस बच्चे को सदा सुखी बनाओ, बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, अगर ये 1 महीना आप करो, देखना आप कि कोई आपको देखेंगे आपके शरीर के चारों तरफ प्रकाश का चक्कर दिखाई देगा, जो बाबा कहता लाइट का क्राउन, वो अपने अपने शक्ति का चिंतन चलना चाहिए, ये निरंतर चक्कर चलता है शक्तियों का, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं जैसे आप सोचते हो उसके वाइब्रेशंस बनते हैं, तो अच्छा शुभ सोचो, आप चाहते हो, आपके पास शुभ नहीं है, तो बाबा से लेके देते रहो, इनको देखते आपके जेब खाली है। बाबा ने कहा था बच्चे संगम पर जेब अपने हाथ में, हाथ अपना जेब में नहीं डालना, मेरे जेब में डालो, सिर्फ संगम पर। सत्युग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग अपने जेब में जो वो दान करना पड़ेगा, संगम पर मेरे से लेके दान करो, कंजूसी नहीं करो। क्योंकि मैं किसके लिए आया हूं, मैं इतना सर्व शक्तियां लेके आया हूं किसके लिए, वापस ले जाने के लिए? बच्चे आपके लिए लाया, मेरे से सेवा ले लो, सारा कलप फिर मैंने मिलेगा, मैं सिर्फ संगम पर मिलता हूं, जितनी लेना चाहते हो मेरे से ले लो, खजाने लूट लो, लूट सके तो इतना चाहे लूट लो। कैसे लूटेंगे? किसी पर नजर गई, एक व्यक्ति भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक दिन करके देख लो, कल सवेरे से रात तक करो, देखो कल रात को आप सोएंगे, कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस मन सदा औरों के प्रति शुभ सोचता है। स्वच्छ मन गहरी नींद करता है। किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, अच्छी तरह से देख लो, और देखते ही किसको देख रहे हो? बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, है ना, आंखें बंद नहीं करो, इधर उधर नहीं करो, अच्छी तरह से देख लो, लेकिन देखकर दृष्टि दे दो, कहा बाबा ने, खाली दृष्टि नहीं, शुभ भावना वाली दृष्टि दे दो। ये सेवा है, और कुछ करने के, मुख से बोलने के, माताजी कहेंगे मैं तो ज्ञान सुनाने सकते हूं, नहीं चाहिए। किसी को अच्छी तरह से देखो, देखते मन में क्या विचार आ रहा है, और मैं देख सकता, आप कहेंगे मेरे पास नहीं, बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो। इतना करने में कोई तकलीफ है, बताओ? ठीक है, मंजूर? तो ये श्रीमत को, मन को लगाम जो लगाना है, मुरली याद रहनी चाहिए। नहीं याद रहते आपस में पूछ लो, सारे दिन में अभी मिलेंगे, कल सवेरे से शुरू करो, किसी से मिलते बात पूछ लो, माता जी क्या मुरली सुनी थी? याद नहीं, को अर्जन मैं सुनाती हूं, पूछ लो, नहीं आता तुरंत आप बताओ, नहीं तो आपको नहीं, इनको पूछो, उनको पूछो, उनको भी याद, देखो याद नहीं थी, फिर पढ़ करके बताओ, जो लिखा है जिसने वो पढ़ के बताओ, आपस में मुरली सुनाना सीख लो। बात करो जरूर, लेकिन मुरली के अलावा और बात नहीं करना, संसार के बातें नहीं करना, है ना। तो ये काम करने में कोई तकलीफ है नहीं? ठीक है, अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ, कोई तकलीफ है, प्रश्न है कि भाइयों के पास है कोई? सब सॉल्व हो गया? कुछ है? आना है, मैंने कहा था, मैंने वादे का वादा, बहन जी इधर बैठे, मैंने वादा किया था, क्या किया था? बहन जी ने अभी तक बताया नहीं, एक महीने के अंदर गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं आऊंगा, देखो। हाँ पूछो, भाई जी कहते सबको पूछ लो, बहन जी को बता, पूछता हूँ, बहन जी कोई मिला आपको, किसी ने चिटकी दी? देखो देखो, फिर कैसे आओ उधर, पहले सुनाया था उसको दोबारा और सुनाने आओ? नहीं, दोबारा बोझ हो जाएगा फिर ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी वादा करके जाओ, भाई जी 15 एक महीने के अंदर बहन जी को हम बताएंगे, जिसने जिसने गुस्सा नहीं किया, भाई जी एक महीने जिसने गुस्सा नहीं किया वो बहन जी को बताओ, फिर बहन जी हमको बताओ। भाई जी 10 लोग अगर बापू नगर से बिना गुस्से के मिल जाए तो मैं जब बुलाऊ तब आता हूं। एक बहन ने करके दिखाया, पता है पाटन में हरीश की किधर है, तो आज से बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले, एक बहन नीलम बहन खड़ी थी, उसके साथ एक छोटी सी कन्या थी वो, तो उसने कहा भाई जी आप कभी आप मेरे पाटन में आते नहीं हो? बहन जी आऊंगा, देखूंगा। तो वो छोटी सी बहन कहती है भाई जी आप क्यों नहीं आते हमारे सेंटर में? तो हमने कहा आपका सेंटर कहाँ है, वो तो दीदी का सेंटर है, तो आप बड़ी हो जाओ, पढ़ो, सेंटर बनाओ, 100 स्टूडेंट हो जाए और हमको बुलाओ, मैं तुरंत कहीं भी होगा तो आ जाऊंगा। और उसने किया, पढ़ी, पढ़ करके सेंटर बनाया 2 मंजिल का, और 100 स्टूडेंट शिवरात्रि के दिन फोन किया, भाई जी आपको याद है आपने एक बार वादा किया था, तो आप 100 स्टूडेंट बनाओ, अपना नया सेंटर बनाओ, मैं आऊंगा। और मैं खास कार करके, दादी भी यहां नहीं थी उस समय, तो भी मैं कार करके स्पेशली गया। तो बापूनगर करेंगे तो क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 लोग, अभी 100 भी नहीं कहता हूं, है ना, 10 ही हाथ अंगुली है ना, 2 हाथ जोड़ना चाहिए, तो कम से कम 10 तो निकलना चाहिए ना। ठीक है, 10 अगर एक महीने के लिए गुस्सा नहीं करता, आप अपने आप बहन जी को बताओ, बहन जी हमने वादा किया था मधुबन में बाबा के घर में, और वादा मैंने एक महीना मैंने गुस्सा नहीं किया, 10 अगर भाई बहने मिल जाए तो भी भारत बापूनगर बाबा का नगर बन जाएगा, है ना। कौन बोलो ये भारती बहन खुश हो जाएंगे, हमारे पीछे किसी ने कुछ तो किया है, हो सकता है ना, बता सकते हो ना, 10 हो गया तो बता दो, मंजूर? जो समझते हैं हम करेंगे वो अभी दोबारा बाबा देख रहा है, एक बार वो हाथ उठाओ देख लो, बाबा देख रहा, मैं नहीं देख रहा हूं, बाबा इधर ही है मधुबन में, बाबा सदा, बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता रहता हूं, देखता रहता हूं, तो जो समझते हैं दोबारा मैं देख लो, एक महीने के अंदर गुस्सा हम नहीं करेंगे, एक महीने के लिए, वो हाथ उठाओ देख लो, बेंजी देख लो अच्छी तरह से, सोफा वाले करना चाहते हैं, ठीक है मंजूर? चलो इंग्लिश में उसको कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, माना कुछ भी नहीं थोड़ा तो निकलेगा, है ना। ऐसे भी बाबा ने कहा पांडव तो पांच ही होते हैं, भगवान के प्रिय व्यक्ति जो है श्रीमत पर चलने वाले सभी नहीं, पांच ही होते हैं, है ना, थोड़े से होते हैं, तो थोड़े से करो, ठीक है मंजूर? और कुछ रह गया, माताओं को कुछ पूछना है? हाँ जी, क्या क्या, हाँ काकभूषण का, तो एक ऋषि था काकभूषण करके, वो जो रामायण की कथा चलती थी वहां आकर के बैठता था कौवे के रूप में, तो ये साधु था, तो उसका नाम है काकभूषण, तो उसकी कहानी जैसे वो आके बैठता था कहानी सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, ऐसे आप कहीं भी सत्संग में जाओ, वहां बैठो, ज्ञान उनका सुनो, फिर उनको भी सुनाओ, साधारण वेश बन के लेके जाओ, ये काकभूषण करके एक साधु का नाम है। तो एक कहानी कही थी, तो बाबा ने कभी मुरली में सुनाया था, कोई ना कोई पूछता है बाबा का, तिजरी की कहानी, सत्यनारायण की कहानी ऐसे सुनाते ना, तो ये एक बार मुरली में आया था, तो ये साधु का नाम है, वो रामायण की जहां कथा चलती थी वहां आके बैठ जाता था और रामायण की कथा सुनने के लिए, तब बाबा ने ये सुनाया, एग्जाम्पल दिया था। और कुछ रह गया? ठीक, ओके, ओम शांति, शांति हो गया, तन भी शांत है, मन भी शांत है, मधुबन में आगे देख लो, है ना, ओम शांति।